रेडियो तेहरान के सभी श्रोता जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ पवित्र कुरान के सूरह अनफाल की दूसरी, तीसरी और चौथी आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। कारी हैं श्री हुशंग मोहम्मद यून।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह को याद किया जाए तो उनके दिल कांप उठें, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाएं तो वे उनके ईमान को और बढ़ा दें, और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और हमने जो कुछ उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे ईमान वाले हैं, उनके लिए उनके रब के पास दर्जे हैं, क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir, और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए हमारा नंबर है 00989035065492। दोस्तों, आज शुक्रवार है, शहरीवर माह की 24, سفر کی 29 اور ستمبر کی 15 تاریخ۔ ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کو اپرانت راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت آپ سنیں گے کارکرم وگیان کی ڈگر، اور سبھا کا انتم کارکرم ہوگا پتر سنسار۔ تو دوستو، یہ تو تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ شروع میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ یوکرین اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ایران نے یورپی سنگھ اور یورپی ٹرائیکا کو سچیت کر دیا۔ بھارت کے وپکشی دلوں نے بھاجپا کاریالے میں پردھان منتری مودی کے سماروہ کی آلوچنا کی۔ یونیسیف اور وشو بینک کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 6 میں سے ایک بچہ غریبی ریکھا سے نیچے ہے۔ اور اب آپ وستار سے اختر عباس سے سماچار سنیے۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ یوکرین اب تک اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ جنگ میں روس نے ایرانی ہتھیاروں کا پریوگ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے انوسار سید ابراہیم رئیسی نے ایم ڈی سی ٹی وی چینل کے ساتھ وارتا میں ایران اور روس کے مدھیے اچھے سمبندھوں پر بل دیا، اور کہا کہ ایران یدھ کا ویرودھی ہے اور دنیا کے وبھن دیشوں کے ساتھ ہمارے سمبندھ اچھے ہیں، ہمارے آرتھک و ویاپارک سمبندھ ہیں، اور روس کے ساتھ ہمارے آرتھک و ویاپارک اور سینیہ سمبندھ ہیں۔ راشٹرپتی نے اسی پرکار ایران کی اور سے یوکرین کے خلاف روس کو ڈرون دیے جانے کے دعوے کے بارے میں کہا کہ ہم نے سمبندھ میں کچھ پوروی یورپی دیشوں سے وارتا کی ہے، اور کہا کہ اگر یوکرینی ادھیکاریوں کے پاس کوئی پرماڑ ہے تو پیش کریں، پرنتو انہوں نے ابھی تک کوئی پرماڑ پیش نہیں کیا۔ ایران اور قطر کے ودیش منتریوں نے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر وارتا کی۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے اپنے قطری سمکش شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی سے پرسپر روچی کے وبھن وشیوں کے بارے میں وچاروں کا آدان پردان کیا۔ ودیش منتری نے دکشن کوریا سے ایرانی سمپتی کے آزاد کرانے اور اسی پرکار بندیوں کی رہائی کے سمبندھ میں قطر کی بھومکا کی سراہنا کی۔ قطر کے ودیش منتری نے بھی جو پریورتن ہوئے ہیں اس پر پرسنتا جتائی ہے، اور کہا کہ اگلے سپتاہ تک ایرانی پیسہ قطری بینکوں میں استھانانترت ہو جائے گا۔ ایران اور قطر کے ودیش منتریوں نے اسی پرکار پرسپر روچی کے وشیوں کے بارے میں وچاروں کے آدان پردان کے جاری رہنے پر بھی بل دیا۔ اسلامی گڑتنتر ایران نے یورپی سنگھ اور یورپی ٹرائیکا کو پرتیبدھتاؤں کو توڑنے اور وعدوں کا الگھن کرنے کے پریناموں کے بارے میں کڑی چیتاونی دی ہے، جس میں 3 یورپی دیش برٹن، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منترالے نے یورپی ٹرائیکا اور یورپی سنگھ کے اس بیان کا بڑا سنگیان لیا ہے، جس میں گھوشنا کی گئی ہے کہ ایران کے میزائل کارکرم سے سمبندھت پرتیبندھ اودھی سماپت ہونے کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ اس بیان کے جواب میں ایران کے ودیش منترالے نے اتیجک اور تناؤ پیدا کرنے والی کاروائیوں کے پریناموں کے پرتی چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی کاروائی نہ کیول دوپکشی سمبندھوں کو جٹل بنائے گی بلکہ پرتیبندھ ہٹانے پر بات چیت سہت دوپکشی سمبندھوں کو بھی کمزور اور پربھاوت کرے گی۔ ایران کے ودیش منترالے نے اپنے بیان میں کہا کہ یورپی سنگھ اور 3 یورپی دیشوں دوارا اسلامی گڑتنتر ایران کے سمگر پرماڑو سمجھوتے کے سمبندھ میں اپنی پرتیبدھتاؤں کا پالن نہ کرنے کا نرنے اویدھ ہے، اور جے سی پی او اے و سرکشا پریشد کے پرستاؤ 22-31 کا الگھن ہے۔ संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत ने सुरक्षा परिषद और राष्ट्र संघ के महासचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और ईरानी जनता के समर्थन में लेश मात्र भी संकोच से काम नहीं लेगा। राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत ने ज़ायनी शासन की गुप्तचर सेवा मोसाद के प्रमुख के युद्धोन्मादी बयान के बाद ये पत्र सुरक्षा परिषद और राष्ट्र संघ के महासचिव को दिया है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी राजदूत अमीर सईद एरवानी ने अपने पत्र में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को अस्थिर बनाने हेतु इसराइल की विनाशकारी गतिविधियों के प्रति चेतावनी देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अनुसार इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों के जवाब में लेश मात्र भी संकोच से काम नहीं लेगा। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान के राजदूत ने सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री से मुलाकात में तेहरान और रियाज के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तैनात ईरान के राजदूत अली रजा एनायती ने सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री खालिद अल खारिजी से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू करने, संयुक्त व्यापार आयोग की बैठक आयोजित करने और व्यापार संबंधों को बहाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को विकसित करने को लेकर गंभीर है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खारजी ने भी कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की परिधि में आगे बढ़ रहा है और हम दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आईआरजीसी की नौसेना ने फारस की खाड़ी से अवैध रूप से तेल की तस्करी करने वाले दो जहाजों को जब्त कर लिया है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी की नौसेना के डिप्टी कमांडर ने दो विदेशी तेल टैंकरों को जब्त करने की घोषणा की है, जिनमें अवैध रूप से 15 लाख लीटर तेल की तस्करी की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल मोहम्मद शरीफ शेर अली ने कहा कि पनामा और तंजानिया के झंडे वाले दो जहाजों को आईआरजीसी की नौसेना ने तेल तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए जब्त कर लिया, जबकि दोनों जहाजों पर 37 कर्मी दल थे, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में हुए छापामारों के हमले में सैन्यकर्मियों के मारे जाने के बीच G20 शिखर सम्मेलन की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुए समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। बुधवार 13 सितंबर को दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में हुए छापामारों के हमले में भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल की कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट्ट और 19 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर आशीष ढोंचक मारे गए थे। उसी दिन दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत समारोह किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सफलतापूर्वक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए एकत्रित हुए। मोदी ने भाजपा कार्यालय का एक चक्कर लगाया था, जिस दौरान उन पर फूल बरसाए गए थे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले थे, जिन्होंने उन्हें G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए बधाई दी। गुरुवार 14 सितंबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने घटना को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की और कहा कि जब हमारे साथी लड़ रहे थे और देश के लिए बलिदान दे रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय अपने ही लोगों द्वारा अपना महिमा मंडन करवा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत खोगले ने भी भाजपा मुख्यालय में जश्न के समय पर सवाल उठाया और पूछा कि मोदी जश्न को एक दिन के लिए स्थगित क्यों नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी प्रधानमंत्री के से इस बारे में सफाई मांगी कि उक्त समारोह को स्थगित क्यों नहीं किया गया। विपक्षी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। नू सांप्रदायिक हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को शुक्रवार 15 सितंबर तड़के ہریانہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس سے ایک دن پہلے راجیہ سرکار نے پنجاب اور ہریانہ کو ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ اس نے 31 جولائی کو نو میں ہوئی سامپردائک ہنسا سے سمبندھت ایک معاملے میں درج ایف آئی آر میں انہیں آروپی کے روپ میں نامت کیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے انوسار خان کو ہریانہ پولیس کی ایک ایس آئی ٹی نے گرفتار کیا ہے۔ بہار کے مظفر پور میں مہاتما گاندھی راشٹریہ گرامین روزگار گارنٹی ادھینیم منریگا یوجنا کے تحت مزدوری کے بھگتان میں اتیادھک دیری کے کارن غریب شرمکوں کو جیوکوپارجن کے لیے اتیادھک بیاج دروں پر نجی رن داتاؤں سے پیسے ادھار لینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ دا ہندو نے اپنی رپورٹ میں اس کی جانکاری دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ معاملوں میں شرمکوں کو لگاتار 5 مہینوں سے بھگتان نہیں کیا گیا ہے، جس سے ان کے لیے اپنے پریواروں اور بچوں کے لیے کم سے کم 2 وقت کا بھوجن بھی اپلبدھ کرانا مشکل ہو گیا ہے۔ یونیسیف اور وشو بینک کے ایک حالیہ وشلیشن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 6 میں سے 1 بچہ غریبی ریکھا سے نیچے رہتا ہے، اور اگر یہ سنکھیا بڑھتی رہی تو 2030 تک بال غریبی کو سماپت کرنے کے لیے ستت وکاس لکش پورا نہیں ہو پائے گا۔ انتراشٹری غریبی ریکھا کے انوسار گلوبل ٹرینڈ چائلڈ مانیٹری پاورٹی نامک رپورٹ میں اتیادھک غریبی سے پیڑت بچوں کا مولیانکن کیا گیا ہے۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن ہتھیار خریدنے میں جھوٹ بولنے کے آروپوں میں بری طرح سے پھنس گئے ہیں اور ان پر سنگھی عدالت میں مقدمہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جاپانی اور دکشن کوریا کے ادھیکاریوں نے روس اور اتری کوریا کے بیچ رکشا سمبندھوں کے وستار پر چنتا جتائی ہے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین اور اتری کوریا کے نیتا کیم جونگ ان کے بیچ روس کے واسٹوچن ایئر بیس پر 4 گھنٹے تک ہونے والی بیٹھک کے بعد یہ پرتکریا سامنے آئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹری سماچار سماپت ہوئے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، کاریکرم راجنیتک چرچا لے کر میں سید میسم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں۔ یوروپیا ٹرائیکا پرمانو سمجھوتے کا ایک اور الگھن کرنے کا پریاس کر رہا ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں محمد مہدی۔
یوروپیہ سنگھ کے ودیش معاملوں کے پرمکھ جوسے بوریل نے گروار کو یوروپیہ سنگھ کی ویب سائٹ پر پرکاشت ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 یوروپیہ دیشوں بریٹن، فرانس اور جرمنی نے انہیں پت لکھ کر کہا ہے کہ پرمانو سمجھوتے کے تحت ایران کے خلاف لگے میزائل پرتبندھوں کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ پرمانو سمجھوتے میں شامل ان 3 یوروپیہ دیشوں کے دعووں کو دہراتے ہوئے بوریل نے کہا کہ ایران نے پرمانو سمجھوتے کے تحت کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے اور اس مدعے کو وواد سمادھان تنتر DRM کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ بوریل کے انوسار 3 یوروپیہ دیشوں کے ودیش منتریوں کا کہنا ہے کہ ایران 2019 سے سمجھوتے پر عمل نہیں کر رہا، اس لیے یہ دیش اسے 18 اکتوبر 2023 سے ادھک پرتبندھوں کو ہٹائے جانے سے جوڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ برٹش ودیش منترالے نے بھی ایک بیان جاری کر کے گھوشنا کی ہے کہ فرانس اور جرمنی کے ساتھ وہ بھی ایران کے خلاف سنیوکت راشٹر کے प्रतिबंधों को अपने घरेलू कानूनों में शामिल कर देंगे और यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के प्रतिबंधों को जो इसी साल अक्टूबर में समाप्त हो रहे बाकी रखेंगे। गौरतलब है कि जुलाई 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के प्रावधानों के तहत ईरान की मिसाइल गतिविधियों के खिलाफ प्रतिबंध अक्टूबर 2023 में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए मिसाइल प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखने के लिए यूरोपीय ट्राइका का ये कदम 2231 प्रस्ताव का खुला उल्लंघन है और इसका मतलब परमाणु समझौते के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाए रखने की पश्चिम की नीति को जारी रखना है। अमेरिका 2018 में एक पक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकल गया था, अब वो भी अक्टूबर में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को हटने से चिंतित है और निराश होकर अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ इन प्रतिबंधों को जारी रखने के लिए हाथ पैर मार रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें ईरान को मिसाइल और ड्रोन उत्पादन और निर्यात को निशाना बनाया गया है और इससे जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडेन प्रशासन ईरान के हथियारों के निर्यात, विशेषकर ड्रोन और मिसाइलों के निर्यात को रोकने के लिए नए प्रतिबंध थोपना चाहता है। हालांकि पिछले कई वर्षों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि इस तरह के कदमों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2020 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ लगे हथियारों के प्रतिबंधों की समाप्ति को रोकने का एक निरर्थक प्रयास किया था जो पूरी तरह से विफल रहा और विशेष रूप से उसे 4+1 गुट के 2 सदस्यों रूस और चीन के विरोध का सामना करना पड़ा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
यरेवन सरकार के शांति प्रस्ताव के जवाब में बाकू सरकार ने भी एक नया प्रस्ताव पेश किया है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने कहा है कि यरेवन सरकार के शांति प्रस्ताव पर बाकू सरकार की प्रतिक्रिया और उसकी ओर से नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संसद सत्र के दौरान आर्मेनिया के विदेश मंत्री मिर्जोयान ने अपने संबोधन में बताया कि यरेवन सरकार जल्द से जल्द काराबाख शांति समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हालिया संपर्कों के बाद आर्मेनिया ने संबंधों के सामान्यकरण के 5वें संस्करण को बाकू को सौंप दिया है और उसे अजरबैजान की ओर से नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि इससे संबंधित समस्त विवादित मुद्दों के समाधान के लिए वार्ता जारी है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों में काफी अंतर है। यहाँ ये सच्चाई ध्यान में रखनी होगी कि काराबाग को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया पिछले दिनों एक बार फिर एक नए युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन ईरान ने आगे बढ़कर इस मुद्दे पर दोनों देशों के साथ सहयोग किया और काराबाग पर तीसरे युद्ध की आशंका के खतरे को शांति में बदल दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान दक्षिण कॉकेशस में स्थिरता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ देश लगातार युद्ध के लिए भूमि प्रशस्त कर रहे हैं और वे इस तरह क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। कई देश ऐसे हैं जो आर्मेनिया और अजरबैजान को उकसाकर नया युद्ध भड़काना चाहते हैं। अमरीका, फ्रांस और एक क्षेत्रीय देश कॉकेशस क्षेत्र में युद्ध भड़काने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पश्चिमी सरकारें आर्मेनिया को भड़का रही हैं ताकि दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र में अशांति उत्पन्न की जा सके। एक क्षेत्रीय देश भी बाकू के अधिकारियों को युद्ध के लिए उकसा रहा है ताकि दक्षिण आर्मेनिया से एक कॉरिडोर हासिल करने के लिए उसे मजबूर कर सके। पश्चिमी सरकारें विशेष रूप से अमरीका और फ्रांस आजरबैजान के साथ युद्ध के लिए आर्मेनिया को उकसाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अमरीकी और फ्रांसीसी अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के जारी रहने की स्थिति में अगर कॉकेशस में एक नई लड़ाई छिड़ती है तो आजरबैजान को इस क्षेत्र में हासिल कई विशेषताओं से हाथ धोना पड़ सकता है। आर्मेनिया और अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास के संदर्भ में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने आर्मेनियाई समकक्ष के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा था कि क्षेत्र से बाहर की सेनाओं को इस क्षेत्र में प्रवेश से स्थिति और अधिक जटिल हो जाएगी। हालिया दिनों में काराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तीसरा युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन तेहरान ने बाकू और यरवन के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास किए। हालांकि तेहरान के प्रयासों के बावजूद काराबाख को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बाकी है और प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सशस्त्र अलगाववादियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मरने वाले सुरक्षा बलों की संख्या 4 हो गई है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
दक्षिणी कश्मीर के गडोल ककरनाग में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 2 दिवस पहले 3 सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनमें आज एक और जख्मों की ताब न लाकर हताहत हुआ। इस तरह इस मुठभेड़ में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि 2 दिवस पहले यहाँ एक इनकाउंटर आरंभ हुआ है और ऑपरेशन अभी तीसरे दिवस भी जारी है। अगरचे ये बताया जाता है कि अलगाववादियों को घेरे में लिया गया है, परंतु अभी तक किसी भी अलगाववादी छापामार की हताहत की कोई सूचना नहीं है। उल्लेखनीय है कि गडोल कोकरनाग नामी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक विशेष सूचना के तुरंत बाद घेराव किया और तलाशी अभियान के दौरान उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और एक DSP अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिनमें आज एक और जख्मों की ताब न लाकर हताहत हुआ। सूत्रों का अगर माने तो अभी 2 सैनिकों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने अलगाववादियों को अपने घेरे में ले लिया है, अभी तक उनके साथ कॉन्टैक्ट इस्टैब्लिश नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये घटना निंदनीय है और स्थानीय लोग इसका जोरदार शब्दों से विरोध कर रहे हैं। इस बीच जितने भी तमाम दल हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मेनस्ट्रीम दलों ने सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इस बीच एक बार फिर CPIM के महासचिव यूसुफ तारगामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में तभी सुधार होगा जब यहां तमाम वर्गों को एतिमाद में लिया जाएगा। पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर LG प्रशासन बहुत बड़े दावे तो कर रही है, परंतु जमीनी स्तर पर उसका कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि LG का ये कहना कि 80% लोग उनके साथ हैं, परंतु मैं ये कहूंगा कि मैं कभी भी रायशुमारी के पक्ष में नहीं रहा हूं और ये व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि लोगों का समर्थन हासिल किया जाए और इस हवाले से हमें लोगों के साथ बात करनी होगी। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, जिसे लेकर उपस्थित है हमारे साथी सैयद मिसम। और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से कपास के कचरे का उपयोग करके घाव की ड्रेसिंग में उपयोग के लिए रोगाणु रोधी नैनो फाइबर पट्टी का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना के आविष्कारकों के अनुसार तुर्कमन सहरा इलाका अतीत से ही कपास की खेती का केंद्र रहा है। इन अध्ययनों में सेलुलोज नैनो क्रिस्टल के उत्पादन और ऊतक इंजीनियरिंग में इसके प्रयोग के लिए तुर्कमन सहरा कपास कचरे का उपयोग किया गया।
इस शोधकर्ता के अनुसार हालिया वर्षों में इन नैनो कणों के यांत्रिक और जैविक गुणों ने कई शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस योजना में उत्पादित नैनो कणों को नैनो फाइबर के सबस्ट्रेट में रखा गया था और फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं की वृद्धि क्षमता का अध्ययन और जांच की गई थी। प्राप्त परिणाम बहुत ही आशाजनक हैं और सेलुलोज नैनो क्रिस्टल की उपस्थिति का सेल के विकास और विस्तार पर कोई नुकसान नहीं पड़ा, इसलिए ये नैनोकण घाव की ड्रेसिंग की मजबूती के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त कारक साबित हो सकते हैं।
इस शोधकर्ता के अनुसार परिणामों की पुष्टि के लिए विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया गया और परिणामों से पता चला कि उत्पादित नमूनों में घाव भरने की गति को बढ़ाने की क्षमता होती है। इस योजना की मुख्य चुनौती नैनो फाइबर्स से ड्रग रिलीज की जांच थी, जिसे मिनेसोटा विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्य प्रोफेसर सीगल के मार्गदर्शन में सावधानी से जांच की गई और नैनो फाइबर्स से ड्रग्स रिलीज के लिए एक उपयुक्त मॉडल प्रस्तुत किया गया।
इस शोधकर्ता के अनुसार इस शोध के परिणामों का उपयोग चिकित्सा उद्योग में किया जाता है, विशेष रूप से घाव की ड्रेसिंग और ऊतक इंजीनियरिंग के उत्पादन में। इस प्रोजेक्ट का 50% रिजल्ट अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में और 50% रिजल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में पूरा हो चुका है। सिंथेटिक नैनोकणों के बजाय प्राकृतिक आधारित नैनोकणों का उपयोग करना इस डिजाइन में सबसे फायदेमंद है और इन नैनोकणों ने यांत्रिक गुणों को बढ़ाने के अलावा जैविक गुणों और कोशिका वृद्धि कारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इस शोध के परिणाम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मैगजीन सी में ड्रग रिलीज एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्पन सेल्यूलोज नैनो क्रिस्टल री इन्फोस्ड पॉली कैप्रोलैक्टोन नामक लेख में प्रकाशित किए गए हैं। हमदान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के शोधकर्ता दवा वितरण प्रणाली में नैनो कणों का उपयोग करके दवा के प्रभाव और उसके असर को बढ़ाने और इस प्रणाली को लक्षित दवा वितरित प्रणाली में बदलने में सक्षम थे। इस योजना के शोधकर्ताओं के अनुसार इस योजना को दवा के साइड इफेक्ट्स को कम करने और नैनो कणों पर आधारित दवाओं का उपयोग करके रोगों की चिकित्सकीय दक्षता में सुधार के महत्व और आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया है।
इस शोधकर्ता के अनुसार इस अध्ययन में हाइलुरोनिक एसिड नैनो पार्टिकल्स बनाने वाले कोपोलीमर को एक नई विधि से संश्लेषित किया गया था और फिर रोगी की बीमार आंत के एक सेल मॉडल पर और फिर उसके बाद एक पशु मॉडल में दवा के प्रयोग का मूल्यांकन किया गया था। उक्त दवा प्रणालीगत अवशोषण के कारण होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने और मरीज की आंतों के उपचार में सुधार करने में बहुत प्रभावी हो सकती है। इस उत्पादन का परीक्षण नमूना बनाया गया है और उत्पाद पेटेंट भी करा लिया गया है। इस शोध के परिणाम जर्नल ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स में प्रकाशित हुए हैं।
दोस्तों शोधकर्ताओं ने खून टेस्ट का एक नया तरीका विकसित करने के लिए $110 मिलियन जमा किए हैं, जो कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक नए रक्त परीक्षण का आविष्कार करके वे पेट, अंडाशय और यकृत कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के शुरुआती लक्षणों को ट्रैक कर सकते हैं या उनका पता लगा सकते हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 3 शोधकर्ताओं द्वारा स्थापित कंपनी ने अब तक कैंसर के शुरुआती लक्षणों की निगरानी के लिए कैंसर सेग टूल की मार्केटिंग के लिए निवेशकों से $110 मिलियन जुटाए हैं। खून में कैंसर का पता लगाने की विधि, जिसे तरल बायोस्पी के रूप में भी जाना जाता है, रक्त प्लाज्मा में ट्यूमर और प्रोटीन मार्करों के DNA में अनुवांशिक उत्परिवर्तन को ट्रैक करके कैंसर की पहचान करता है।
उपकरण के लिए शुरुआती अध्ययन आशाजनक रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी सुधार के लिए महत्वपूर्ण मौका है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक शोध 2018 में साइंस जर्नल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस शोध में कैंसर के शुरुआती चरणों में ट्यूमर वाले 1000 रोगियों ने भाग लिया और कैंसर सिक टूल 70% की सटीकता दर के साथ कैंसर के शुरुआती लक्षणों को ट्रैक करने में सक्षम रहा। कैंसर सिक अंडाशय और यकृत कैंसर का पता लगाने में विशेष रूप से सफल रहा और 98% सटीकता के साथ इन कैंसर के मामलों की पहचान करने में सक्षम था, लेकिन स्तन कैंसर का पता लगाने में इसका प्रदर्शन बहुत ही खराब था। वैज्ञानिकों को कैंसर सेक पर अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस संबंध में गी जिंगर के सहयोग से इस उपकरण का प्रयोग 1000 स्वस्थ प्रतिभागियों की उपस्थिति के साथ शोध में किया जाना है।
दोस्तों, आइए तुलसी के 6 अन्य गुणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शरीर में वात दोष पड़ने के कारण मासिक धर्म की अनियमितता हो जाती है। तुलसी के बीज में वात को नियंत्रित करने का गुण होता है, इसलिए इसका प्रयोग मासिक धर्म की अनियमितता में किया जा सकता है। तुलसी का बीज कमजोरी दूर करने में सहायक होता है, जिसके कारण मासिक धर्म होने के दौरान जो कमजोरी महसूस होती है उसको दूर करने में मदद करता है।
सांसों की दुर्गंध ज्यादातर पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण होती है। तुलसी अपने दीपन और पाचन गुण के कारण सांसों की दुर्गंध को दूर करने में सहायक होती है। इसमें अपनी स्वाभाविक सुगंध होने के कारण भी ये सांसों की दुर्गंध का नाश करती है। चोट लगने पर भी तुलसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोपण और सूजन को कम करने वाला गुण होता है। तुलसी का यही गुण चोट के घाव एवं उसकी सूजन को भी ठीक करने में सहायक होता है।
तुलसी का उपयोग चेहरे का खोया हुआ निखार वापस लाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें वृक्ष और रोपण गुण होता है। वृक्ष गुण के कारण ये चेहरे से त्वचा को अत्यधिक तैलीय होने से रोकती है, जिससे कील मुहासों को दूर करने की मदद मिलती है। इसके अलावा रोपण गुण से त्वचा पर पड़े निशानों और घावों को हटाने में भी सहायता मिलती है। यदि तुलसी का सेवन किया जाए तो इसके रक्त शोधक गुण के कारण अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर चेहरे की त्वचा को निखारा जा सकता है।
दोस्तों, 5 से 10 मिली तुलसी के रस को पिलाने से तथा इसकी मंजरी और जड़ों को पीसकर सांप के काटने वाली जगह पर लेप करने से सर्प दंश की पीड़ा में लाभ मिलता है। अगर रोगी बेहोश हो गया है तो इसके रस को नाक में टपकाते रहना चाहिए। तुलसी को आप अपने घर के आंगन में भी उगा सकते हैं। सामान्य तौर पर तुलसी के पौधे के लिए किसी खास तरह के जलवायु की आवश्यकता नहीं होती, इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे का रखरखाव ठीक ढंग से न करने पर ये पौधे के आसपास गंदी या गंदगी होने पर यह पौधा यानी तुलसी प्लांट खुद ब खुद सूख जाता है।
क्या तुलसी के सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है? आयुर्वेद के अनुसार तुलसी में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक सर्दियों के मौसम या मौसम में बदलाव के दौरान तुलसी के सेवन की सलाह देते हैं। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और कई मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सर्दी खांसी से आराम पाने के लिए तुलसी का इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप सर्दियों के मौसम में अक्सर सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो तुलसी वाली चाय यानी तुलसी टी का सेवन करें। तुलसी की चाय सर्दी जुकाम दूर करने का रामबाण इलाज है। आप चाहें तो बाजार से सीधे तुलसी वाली चाय खरीद कर उसका सेवन कर सकते हैं या फिर घर पर बनने वाली चाय में तुलसी की 3 से 4 पत्तियां डालकर उसका सेवन करें। इसके सेवन से सर्दी खांसी के लक्षणों से जल्दी आराम मिलता है।
तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश और दीदी मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
तो इस उम्मीद के साथ कि जैसा कि दीदी ने कहा है कि आप जहां भी होंगे सकुशल होंगे और ये आशा करते हैं कि आप इस वक्त हमारा कार्यक्रम यानी अपना कार्यक्रम न केवल हमारा कार्यक्रम पत्र संसार जरूर सुन रहे होंगे।
तो भैया, अब हम जैसे हम पहले से कहते आए हैं कि ईमेल शामिल कर रहे हैं और यह है दुर्गेश नागनपुरे का ईमेल है, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। पहले इन्होंने सुविचार लिखा है, धनहीन को अच्छा वक्त आने की उम्मीद सदैव रहती है किंतु अमीरों को बुरा वक्त आने का खौफ। और आगे लिखते हैं कि माना जाता है कि अधिक धनवान व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह पाता, उसे और अधिक धन कमाने की इच्छा रहती है, वही उस धन के संरक्षण का भी भय बना रहता है, किंतु गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति स्वयं कर्म करता है और अपने अच्छे दिन, अपने भाग्य के बदलने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहता है। ये इन्होंने लिखा।
दीदी, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कोट करना चाहूंगा, वो ये कि ऐसा नहीं है कि कोई धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति जो है सुकून से नहीं रह सकता, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा सुकून से रह सकता है। ऐसा नहीं है, आप ये ना समझिएगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है या मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन वो धनवान व्यक्ति जो गरीबों की मदद करता है
जी,
सहायता करता है
जी,
जो अपने धन को दान में देता है, वो बहुत ही चैन की नींद भी सोता है, उसको बहुत सुकून भी रहता है और उसे किसी बात का डर या भय नहीं रहता, इसलिए कि वो ये जानता है, उसको इस बात का विश्वास रहता है कि जिस रास्ते में हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, जहां पर हम इस धन को जो है दे रहे हैं, वहीं से हमारी सुरक्षा भी होगी, हमें हमारी यानी आत्मा को भी शांति मिलेगी, हमें भी शांति मिलेगी और इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सुकून होगा। तो इसलिए धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, धनवान बनिए, प्रयास कीजिए कि आप पैसे कमाएं, इसके लिए आप मेहनत भी कीजिए, लेकिन उन पैसों का कहां पर इस्तेमाल करना है उस रास्ते को, उस जगह का आप यानी जगह के को आपको मालूम होना जो है वो ज़रूरी है
जी। नीरज साहू उत्तर प्रदेश बिहार से लिखते हैं कि दीदी, हमें दिनांक 3 अगस्त का कार्यक्रम पत्र संसार बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र, टिप्पणी और विचार काफी मन भावन लगे। साथ ही आपने ईरानी संस्कृति से जुड़ी खबर के बारे में बताया, हमें बहुत पसंद आया। वही हमें आपका विज्ञान की डगर प्रोग्राम भी बेहद शानदार लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहू जी। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके बारे में आप और अच्छे अच्छे विचार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने केवल दीदी की तारीफ की है। आप हमारी तारीफ ना कीजिए, केवल दीदी ही की तारीफ कीजिए। ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम आपका इसके लिए बहुत ही मन की गहराई से, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त आप अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार सुन रहे हैं और ये जो टाइम है वो है दीदी के पास चलने का, क्योंकि दीदी इस वक्त तैयार हैं संस्कृति से जुड़ी एक कोई खबर के साथ। या आप देखते हैं क्या है, बरा वो दीदी ही बताएंगी, तो सीधे चलते हैं दीदी के पास।
जी, और भैया आज मैं आपको एक, कभी आपने सुना भी होगा यानी व्यंजनों के बारे में जो इसके यानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं दुनिया में, तो उसके बारे में बताने जा रहे हूँ। दुनिया भर में स्थानीय भोजन, पारंपरिक रेस्तरा और शुद्ध व्यंजनों के लोकप्रिय विश्वकोश टेस्ट एटलस द्वारा जारी दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ फ्लैट ब्रेड की सूची में ईरान के पारंपरिक नाने बारबारी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वाद एटलस सूची में नाने बारबारी को तीसरा स्थान दिया गया है। इससे पहले भारत की बटर गार्लिक नान दूसरे स्थान पर और मलेशिया की रोटी कनाई जो सूची में पहली आई है, और ईरान के नाने संगक और नाने शिरमाल भी 21वें और 22वें स्थान पर आए हैं, जबकि नाने तफ्तुन ने 49वां स्थान हासिल किया है। नाने बारबारी एक ईरानी गेहूं आधारित खमीरयुक्त फ्लैट ब्रेड है और यह आमतौर पर लंबे अंडाकार आकार में बनता है। पारंपरिक तंदूर यानी ओवन में पकाने से पहले ब्रेड पर आमतौर पर खशखश, कलौंजी या तेल छिड़का जाता है, और ये कुरकुरी ब्रेड ईरान में नाश्ते का मुख्य व्यंजन है। इसे ताज़ा तैयार और मलाईदार स्प्रेड, पनीर और विभिन्न प्रकार की ताज़ी सब्जियों के साथ परोसा जाना सबसे अच्छा है।
बहुत ही सही बात बताई दीदी। वैसे यहाँ मैं भी इस बात को बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत ही स्वादिष्ट रोटी होती है ये, और विशेषकर जैसा कि आपने कहा कि नाश्ते के टाइम पर, तो ये सच में नाश्ते के टाइम पे आप इसको खाली चाय के साथ भी खा सकते हैं।
जी, डुबो के खा सकते हैं।
हाँ, डुबो के इसको खा सकते हैं। और हम भारतीय जो आमतौर से घर की बनी हुई रोटी खाते हैं, बहरहाल वो हमको ज्यादा पसंद होती है और पसंद है भी, लेकिन ये इस रोटी का भी कोई जवाब नहीं है। एक बार आप जब भी ईरान, हमारे जो भी श्रोता यहाँ है, तो ये रोटी यहाँ पर घर में तो बनती नहीं है आमतौर से, दीदी आपको पता ही है। बहरहाल यहाँ पर महिलाओं के लिए, खासकर आपके लिए बहुत ही आरामदेह चीज है कि यहाँ पर घरों में जो है वो रोटियां नहीं बनती है, इसलिए जो महिलाएं हैं हमारी घर की महिलाएं, माता बहनें, उनको इस बारे में यानी रोटी को लेकर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता और कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, इसलिए कि हमारी भारतीय महिलाएं आमतौर से बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। वो सुबह भी रोटियां बनाती हैं, दोपहर में भी रोटियां बनाती हैं, रात में भी रोटियां बनाती हैं, तो एक बहुत ही मेहनत का काम है। बहरहाल यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी दोनों दुकानें होती हैं रोटियों की, तो आप जब भी ईरान आए तो यहाँ पर रोटी की दुकान पर जाएं। और अच्छा, ये भी एक बताते चले अपने श्रोताओं को कि जैसे संगक रोटी है उसकी अलग दुकान होती है, बरबरी है उसकी अलग दुकान होती है, ताफ्तून है तो उसकी अलग दुकान होती है, तो हर एक की दुकान कुछ, अब ये मॉडर्न जमाने में एक ऐसा होने लगा है कि एक ही दुकान पर सारी रोटियां मिलने लगी हैं। तो आप जब भी कहीं भी किसी रोटी की दुकान पर आइए ईरान की अपनी यात्रा पर, ईरान के अपने सफर में, तो वहां जाकर सुबह सुबह जरूर लाइन में लगिए और कहिए कि हमको एक बरबरी रोटी खानी है। जब आप उस बरबरी रोटी का इस्तेमाल करेंगे, उसको खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपने भैया रविश की याद जरूर आएगी आपको। तो श्रोताओं चलते हैं अपनी दीदी मरियम मेहरदादी के पास और देखते हैं कि आप ही लोगों ने किन किन खबरों पर क्या क्या कमेंट्स किए हैं।
आतंकी इसराइली सैनिकों ने फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ ऐसा क्या किया कि ईरान भड़क उठा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताई ज़ायनी सैनिकों की सच्चाई। इस पर हुशैंग लिखते हैं, तीसरी दुनिया में सभी आक्रमणकारी और कब्जा करने वाली ताकतों द्वारा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ अक्सर बलात्कार किया जाता है और ये एक सच्चाई है जिसे आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। ये समझ से परे है कि मध्य पूर्व में ये एक अमानवीय इकाई है जो इस तरह के पाशविक और जानलेवा कृत्यों को बेखौफ होकर अंजाम देती रहती है।
बिल्कुल सही कहा है आपने। और एक चीज ये भी है, बहुत ही बारीकी से अगर इसके ऊपर ध्यान पूर्वक जो है वो नजर डाली जाए तो ये देखने को मिलेगा, एक तरफ जो अपने आप को आधुनिक यानी मॉडर्न दुनिया कहते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा तरक्की विकास वाले जो लोग अपने आप को कहते हैं जो देश, आप ये देखिए कि वहाँ पर महिलाओं के साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार इसलिए हम तक नहीं पहुंच में आता कि वो ये कहते हैं कि ये अत्याचार नहीं है, ये महिलाओं की तरक्की है, महिलाओं का विकास है, उनकी स्वतंत्रता है। तो महिलाओं की आज़ादी के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार अगर आप देखिएगा तो पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब अगर इधर देखिएगा आप, जो एक आतंकी अवैध ज़हनी शासन है जो पश्चिमी एशिया में, इसने तो महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के वो रिकॉर्ड बनाए हैं कि दुनिया में हर इंसान जो है उसके इन अत्याचारों के सामने वाकई शर्मसार है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
सीरिया का पीछा छोड़ नहीं रहा है अमेरिका। इस पर जाफरी लिखते हैं कि सीरिया को अमेरिका और आरएफ के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया गया है। इसराइल और टर्की ये चारों मिलकर सीरिया को तोड़ने के लिए गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं।
देखिए, इनका अपने हित वहाँ पर जुड़े हुए हैं, अमेरिका है चाहे वो इसराइल तो है ही है और तुर्की के भी अपने हित वहाँ जुड़े हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सूरिया यानी सीरिया में इनके हित की चीज़ें हैं, जिन जिन जगहों पर, जिन जिन इलाकों में, हर इंसान जैसे होता नहीं कोई एक माल पड़ा होता है ज़मीन पर तो जो भेड़िए होते हैं, जैसे कोई मुर्दा जानवर पड़ा होता है तो भेड़िए आते हैं, वो अपना अपना हिस्सा नोचते हैं नोच के खाते हैं। तो इसी तरह इनकी नज़र में इस टाइम सीरिया की हालत यही है कि ये देख चाह रहे हैं कि हर आदमी अपने हिस्से का नहीं हक जो है हक नहीं यानी अवैध तरीके से वो सीरिया की आवाम का उनका उनके हक को नहीं खींच लें छीन लें। बहरहाल सीरियाई जनता बहुत वर्षों से जो है वो संघर्ष कर रही है और वहाँ की सरकार भी संघर्ष कर रही है जिसका साथ इस्लामिक गणतंत्र ईरान ने भी दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से वो इस यानी सीरिया की जनता के हक को छीन पाएंगे। श्रोताओं चलते हैं फिर से एक बार दीदी मरियम मेहरदादी के पास और उनके पास हमारे किसी प्रिय श्रोता का विचार है जिसको मैं अभी तक नहीं जानता हूं, ये आप विश्वास जानिए मुझे नहीं पता कि उनके पास किसका है, तो आप ही की तरह मैं भी उन्हीं के पास चलता हूं, देखता हूं कि किसके विचार को हमारे लिए और आपके लिए वो पेश कर रही हैं।
तो भैया पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान से मोहम्मद अरशद कुरैशी के विचार जाने थे, अब उनका दूसरा भाग हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
जी 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 दीदी, मैं बिल्कुल भूल गया था इस बात को कि हमारे जिस प्रिय श्रोता ने जो मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब ने जो है जो अपने विचार पेश किए तो बहुत ही अच्छे विचार थे उनके पहले भाग में, तो मैं तो इस टाइम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ दीदी कि इस बार वो अपने क्या विचार रखते हैं। तो चलिए श्रोताओं साथ में मिलकर सुनते हैं मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब के विचारों को।
अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। जो ही मुहर्रम शुरू होता है तो आपने देखा होगा यहाँ शिया और सुन्नी के लिए कुछ ऐसी बातें ऐसे सोशल मीडिया पर छोड़ दी जाती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और उसका मकसद ये होता है कि इंतशार फैलाया जाए। तो یہ تو عالمی سازش ہے، اس سے بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور جو ہماری علاقائی سازشیں کر رہے ہیں، دشمن کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس کا پہلا ہدف ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام کی طاقت کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے، عوام کو فوج کے خلاف کر دیا جائے، عوام میں مذہبی مسلکی نفرتیں پیدا کر دی جائیں تاکہ وہ لڑتے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ تو یہ جو آج کل اس میں شدت آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، شیعہ اور سنی کے خلاف بات کی جا رہی ہیں، یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل تشیع کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یا یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو اہل سنت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں اپنا شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا، آپس میں پیار محبت کرنی ہوگی، آپس میں پیار محبت کا پرچار کرنا ہوگا، اور ایسی چیزوں کو جو یہ پھیلائی جا رہی ہیں ملک کو، اسلام کو، ہمارے دین کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو روکنا ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو روکنا ہوگا، یہ آپ کا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موضوع پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
بہت بہت دھنیواد محمد ارشد قریشی صاحب۔ تو دیدی اب ہمارے پاس بالکل سمے نہیں بچا ہے، تو جلدی سے اپنے شروتاؤں سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے بھیا روش زیدی کو اور دیدی مریم مہدادی کو انومتی دیجیے۔ خدا حافظ۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور سمجھ چکے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ یوکرین اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے۔ ایران نے یورپی سنگھ اور یورپی ٹرائیکا کو سچیت کر دیا ہے۔ بھارت کے وپکشی دلوں نے بھاجپا کاریالے میں پردھان منتری مودی کے سماروہ کی آلوچنا کی ہے۔ اور یونیسیف اور وشو بینک کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 6 میں سے 1 بچہ غریبی ریکھا سے نیچے ہے۔ تو دوستوں میں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھارتی پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔